अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं रिजवाना परवीन, आर्यन कॉलेज हाजीपुर वैशाली। आज बीए पार्ट वन के पेपर फर्स्ट का मैं क्लास लेने जा रही हूँ, और पेपर फर्स्ट में गालिब की सवाने के हवाले से मैंने पहले आपको एक कंटेंट दे दिया था, और जिस पे मैंने शायद लिखा भी था कि आप लोग इसे पहले पढ़ लीजिएगा। सवाने के बाद बात आती है उनकी गालिब की शायरी की खसूसियात बयान करने की। अब ज़ाहिर है गालिब एक ऐसा शायर है जिसको पढ़ने और पढ़ाने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है, और इसके अनेक पहलू हैं पढ़ने के भी और पढ़ाने के भी, लेकिन बिलखसूस शायरी के हवाले से गालिब की गज़ल गोई पे आज बात की जाएगी, और उनकी गज़लों में, उनकी शायरी में, उनके अशार में जो खसूसियात हैं उस पर हल्की सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगी। गालिब के हवाले से जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि गालिब के अगर एक शेर को भी पेश नज़र रखा जाए तो उस पर कई सफ़े लिखे जा सकते हैं। तो ज़ाहिर है जब एक शेर पे कई सफ़े लिखे जा सकते हैं तो उसकी शायरी में इतनी वसअत होगी, इतनी गहराई होगी, तभी तो इसका मतलब ये हुआ कि गालिब के अगर एक शेर को कोई उस्ताद पढ़ाए तो उसको पढ़ाने के लिए एक उस्ताद कुछ किसी और पहलू से बता सकता है, तो दूसरा शख्स या पढ़ने वाला उसे किसी और पहलू से भी उसको समझ सकता है। तो गालिब चूँकि एक बहुत बड़ा शायर है, एक फ़लसफ़ी शायर है, तो एक फ़लसफ़ी शायर को पढ़ने और समझने के लिए उसके कलाम के मुतालिया के साथ साथ उसके अहद को, उसके ज़माने को और उसके जो हमसर शोरा हैं उनको भी समझना पड़ता है। तो ये सारी बातें होती रहेंगी, होंगी आइंदा क्लास में इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें गालिब की शायरी के हवाले से चलिए हम बात करते हैं। गालिब उर्दू का एक इंतहाई नामवर और अजीम शायर है। उनको सबसे ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत गज़ल ही की बदौलत मिली है। वैसे गालिब को दिगर असनाफ शायरी जैसे कसीदा, मरसिया और सहरा निगारी वगैरह पर भी कुदरत हासिल थी, और फ़ारसी में भी उन्होंने अपना काफ़ी कलाम छोड़ा है। गालिब इब्तिदा में बहुत मुश्किल अशार लिखा करते थे। वो क्लासिकी शोरा की तकलीद में पेचीदा तरकीबें, दकीक और मुश्किल अल्फाज, तशबीहें वगैरह इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से आम लोग गालिब के अशार को समझ नहीं पाते थे। लेकिन जूं जूं उनका शऊर पुख्ता होता गया, उन्होंने तकलीद को छोड़कर अपना एक इनफराद और रंग अख्तियार किया, और इससे उनकी शिनाख्त भी कायम होने लगी। गालिब के अशार में जज्बे की हरारत के साथ साथ फ़िक्र की गहराई, मुशाहदात की ताजगी और इनफरादियत हर जगह नुमाया है। यही खूबियाँ उनकी शायरी में अजमत पैदा करने का बायस या सबब बनती हैं। गालिब को फ़ारसी ज़ुबान पर भी गैर मामूली उबूर हासिल था। इनके उर्दू कलाम में फ़ारसी तरकीबों का इस्तेमाल कसरत से देखने को मिलता है, लेकिन अपने आखिरी ज़माने के कलाम में गालिब ने फ़ारसी तरकीबों के इस्तेमाल में थोड़ी कमी लानी शुरू कर दी थी। गालिब की गज़ल में उसलूब आगे चलकर बहुत मकबूल हुआ, और उन्होंने बाद के शायरों में पर अपना गहरा असर छोड़ा। फ़ारसी तरकीब की मदद से गालिब ने नहायत लतीफ़ जज्बात व एहसासात की बड़ी कामयाबी के साथ तर्जुमानी की है। गालिब के इब्तदाई कलाम में मुश्किल अल्फाज और पेचीदा तरकीब बड़ी कसरत से मिलती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने मुश्किल पसंदी को तर्क कर दिया। इसकी जगह खुशनुमा तरकीब और सहल अल्फाज का इस्तेमाल जारी रखा। गालिब ने अपने कलाम में हुस्न इश्क के जज्बात और एहसास भी बयान किए हैं, और फ़लसफ़ा व फ़िक्र की गहराई और गिराए भी इनके कलाम में मौजूद है। इसके अलावा हकीमाना अफकार और मसूफाना ख़यालात के ज़रिया भी गालिब ने अपने कलाम में वसअत और तनव्वो पैदा किया है। غالب نے اپنی فکر، اسلوب اور جد ترازی کے ذریعہ اپنے بعد کے بہت سے شعرا کو بھی متاثر کیا، جو ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ غالب ایک نابغہ روزگار شخصیت کے مالک تھے، اور وراثت میں بھی انہوں نے خاندانی وقار اور عظمت پائی تھی، اس کا انہیں شدید احساس بھی رہا، لیکن زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کا وہ بھی شکار ہوئے اور بہت سی مصیبتیں اور محرومیاں دیکھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے حوصلہ اور ہمت نہیں ہاری، بلکہ وہ ان مسائل پر فلسفیانہ انداز میں سوچتے تھے۔ غالب کے یہاں فلسفہ و فکر کا بڑا گہرا شعور ہے، وہ متصوفانہ مضامین اور افکار سے متاثر تھے اور ان کو اپنی غزلوں میں پیش بھی کیا ہے۔ وہ خوش مزاج اور شوخ طبع انسان تھے۔ آپ سبھی جانتے بھی ہیں کہ غالب کے لطیفے بہت مشہور ہوا کرتے تھے۔ یہاں ایک لطیفہ نوٹ کر لیجئے۔ غالب اپنے مکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے یہاں ایک دوست آئے اور ان کے دروازے کے سامنے سے، اصل میں یہ ماجرا یہ ہے کہ وہ غالب کے دوست جو تھے وہ آم نہیں کھاتے تھے، اور اس دوران میں دروازے کے باہر گدھا جا رہا تھا اور آم کا چھلکا پڑا تھا، تو اس نے منہ سونگھ کر وہ کھایا نہیں اسے، اور گدھا گزر گیا۔ تو غالب کو آم بہت پسند تھے، تو ان کے دوست نے غالب پہ طنزیہ کہا کہ جناب دیکھیے گدھے بھی آم نہیں کھاتے۔ تو غالب کی حاضر جوابی سنیے۔ غالب نے کہا جی جی جی، گدھے آم نہیں کھاتے۔ تو مطلب یہ کہ حاضر جوابی سے انہوں نے کس طرح ہے ان کو جواب دیا اور ان کے منہ کو بند کر دیا۔ چلیے آگے ہم غالب کی شاعری کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو غالب کے کلام کی خصوصیات تھی اور ان کے مزاج کی بات تھی، اور آپ کو ہم نے پارٹ ٹو میں غالب کے خطوط کو بھی پڑھنا ہے آپ لوگوں کو۔ تو غالب کے خطوط کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں پائیں گے کہ کس طرح سے غالب نے اپنے خطوط میں کس مزاحیہ اور کس ڈرامائی انداز میں اور یہ مکالمے کے انداز میں جو ہے اپنے دوستوں کو انہوں نے خطوط لکھے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آئندہ کلاس میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ چلیے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ غالب کے یہاں فلسفہ و فکر کا بڑا گہرا شعور ہے، وہ متصوفانہ مضامین اور افکار سے متاثر تھے اور ان کی غزلوں میں پیش بھی کیا ہے اس سے انہوں نے۔ وہ خوش مزاج بھی تھے اور ایک خوش طبع انسان تھے۔ زمانے کے عالم و مسائل کو بڑی دلیری کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔ اس حوالے سے یہاں ایک شعر ہے کہ بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یعنی اس شعر میں غالب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے بچوں کے کھیل کے مانند ہے، جس طرح سے بچے جو ڈیلی یعنی روزانہ ایک نئے نئے کھیل کھیلتے رہتے ہیں، تو یہ دنیا بھی بس اسی طرح سے ہے کہ دنیا میں ہر دن ایک نیا تماشا رونما ہوتا ہے۔ تو غالب جیسا شعور مند انسان جو ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس طرح کے تماشوں سے بھری پری ہے اور ہر دن ایک نئے تماشے رونما سامنے آئیں گے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ غالب کی غزل گوئی کا ایک امتیازی وصف حسن و عشق کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ غالب کو حسن و محبت کے لطیف جذبات کو شعر کے پیکر میں ڈھالنے پر بھی بہت قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے فلسفہ و فکر اور متصوفانہ افکار و نظریات، اخلاق اور حکیمانہ بصیرت اور عشق و محبت کے جذبات کی ترجمانی کے ذریعہ اپنی غزلوں میں ہمرنگی پیدا کی ہے اور صنف غزل کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ مجموعی طور پہ ہم یہ غالب کے کلام کی خصوصیات پہ بات کرتے ہوئے ان کے یہاں جن چیزوں کو پاتے ہیں وہ ہے اعلیٰ افکار۔ دوسری بات ہے کہ ایسے موضوعات جو ان سے قبل کسی نے پیش نہیں کیے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ अपने दौर को, अपने से अपने पीछे के अहद को और अपने से 100 साल आगे की चीज़ों को भी अपने शायरी में पेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो ज़िंदा जावेद उनके उनके कलाम भी हैं, और वो भी क्योंकि हर बड़ा शायर वो अपने से अपने अहद से के बहुत आगे तक को देख लेता है, जिस तरह से इकबाल ने भी आज जो सूरत हाल है उन चीज़ों को उन्होंने अपनी 100 साल पहले की शायरी में बयान कर दिया था कि मुसलमानों जागो वरना आपकी निशान भी बाकी ना रहेंगे। तो खैर इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमें हमें बड़े शोरा को पढ़ने पढ़ते वक्त जहन में को मतलब जहन को बिल्कुल कुशादा करके अपने अफकार को जहाँ तक हो सके ये करके पढ़ना है कि इनके यहाँ इस तरह की चीज़ें हैं और ये चीज़ें जो है वो किस किस तरह से कलाम में आई हैं, इन चीज़ों को हमें समझने की कोशिश करनी है और बग़ौर मुताला करना है इनके कलाम को भी, इनके अशार को भी, और प्लस इनसे मुतालिक जितनी भी किताबें मुयसर हो सके, नोट्स मुयसर हो सके, चीज़ें मिल सके, मवाद मिल सके, उन सभी को आप मवाद को मुताला कीजिए। इसलिए ये लिमिट नहीं है कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं जो मैडम या सर ने जो नोट्स दिया है आप बस उसी पे इक्तफा कर जाए, हम हो या कोई भी टीचर हो, तो वो अपनी जानकारी या उस वक्त उनके पास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं मौजूद होती हैं उससे समझ कर वो चीज़ें तैयार करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर्फ आखिर है, आप उस चीज़ को हाँ से वही उसी टॉपिक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मिल जाएंगी बाद में पढ़ने के लिए कि अरे ये चीज़ तो हमने नहीं पढ़ा था। इसलिए आप अपना मुताला जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आप लोग इस नोट्स को इस यानी ऑडियो को सुनिए, बार बार सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।